पृष्ठ संख्या 79 अध्याय 7 शैव धर्म। हिंदू धर्म के संप्रदायों में वैष्णव और शैव संप्रदायों की प्रमुखता रही है। भारत में 5 देवताओं की प्रधानता अतीत काल से आज तक बनी है। इन्हें पंचदेव कहते हैं। ये हैं शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी। इनमें शिव शैवोपासकों के अनुसार शांतम शिव चतुर्थम अद्वैतम मन्यते, अर्थात यही चौथी तुरीयावस्था ब्रह्म का वाचक है। इनको बीज प्रदह पिता के रूप में देखा जाता है, इसलिए इनका एक विशेषण है महादेव। इससे अभिप्राय है सभी देवताओं में बड़ा श्रेष्ठ। इनके संप्रदाय शैव धर्म का इतिहास अत्यंत पुराना है। तब से जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ, इसी से शास्त्रों में कहा गया है कि तब एक ही तत्व था रुद्र, दूसरा तत्व था ही नहीं। जब कल्याणकारी देवताओं और रुद्र गणों की कल्पना साथ साथ की गई, तब दोनों पक्षों का आदर्श समग्र में स्थापित किया गया। इसी का जीवंत उदाहरण शैव धर्म है, जहां रुद्र शिव से चलकर कल्याणकारी शिव तक हम पहुंचते हैं। इसकी परंपरा तांत्रिक संप्रदाय तक चलती जाती है। इसलिए शिव की मूर्तियां और मंदिर बहुतायत से भारत में तथा भारत के बाहर सर्वत्र मिलते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि संसार के विभिन्न देशों में इस देवता की उपासना अतीत से ही विभिन्न नामों से की जाती रही है। इनकी मूर्तियां वहां की कला में आज भी विद्यमान हैं तथा आज भी इनकी पूजा वहां की पद्धति से होती है। शिव तत्व। शिव शब्द वश कांतौ धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है जिसको सब चाहते हैं उसी का नाम शिव है। यहाँ स्पष्ट है शिव अखंड आनंद के स्रोत होने के कारण सबके द्वारा चाहे जाते हैं। अतः शिव का अर्थ आनंद है। यही अर्थ उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले दूसरे नाम शंकर से भी व्यक्त होता है, क्योंकि शम आनंद और कर करने वाला। योगी राज अरविंद ने ब्रह्मा को अमर, विष्णु को सनातन और शिव को अनंत कहा है। अनंत का अभिप्राय जो अनंत आनंद देने वाला हो। स्वामी करपात्री जी ने सिंह स्वप्ने धातु से शिव शब्द की सिद्धि की है और इसका अर्थ किया है शेरते प्राणिनो यत्र स शिवा। जहाँ प्राणी शयन करते, थकावट दूर करते हैं, वही शिव कहा जाता है। शंकर अर्थात प्राण रहित भौतिक शरीर ई शक्ति का सूचक है, जो सबसे उन्हें शिवत्व प्रदान करता है। इस प्रकार शिव की पूर्णता प्रकृति या माया के ही साथ है। शिव के को अनेकों नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि इनमें अनेक विशिष्ट गुणों का समन्वय है। वेदों के रुद्र शिव ही हैं, तभी कहा गया है एको ही रुद्र स शिव। यह दुखों को विनष्ट करने से रुद्र कहे जाते हैं। यह अपने रुद्रों को शीघ्र ही प्रकट करने के कारण भी रुद्र कहे जाते हैं। द्रुतम मत्स्य रूपम उपलभ्यते आशुतोष भी इन्हीं का नाम है, जिसका अर्थ है शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला। इनका नाम मृत्युंजय भी है, इसका अर्थ है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तथा अमरत्व की प्राप्ति कर ली हो। त्रयंबक भी ये कहे जाते हैं, क्योंकि उनके तीन नाम हैं सोम, सूर्य और अग्नि। इन्हें जगत गुरु भी कहा गया है। गुरु की कृपा बिना इष्ट देव की प्राप्ति नहीं होती, अतः शिव जी के प्रसन्न किए बिना इष्ट का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता है। याभ्याम विना न पश्यंत सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। शिव तीन अक्षरों से मिलकर बना है, श धन ई धन व। श शयन तथा सुखवाचक है, यह समाधि का बोधक है। ई अविष्ट की सिद्धि का बोधक है, इसकी उपलब्धि से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जो भौतिक ताप है। वह बीज है अमृत बीज, इससे दैविक ताप का निवारण हो जाता है। इस प्रकार यह त्रिताप दैहिक दैविक और भौतिक का विनाशक है। एक शब्द में कहा जाए तो यह अमंगल के नाश का बोधक है। शिव तत्व के तीन रूप हैं, कार्य ब्रह्म, जगत का उदय स्थान। कारण ब्रह्म निलय स्थान तथा कार्य कारणातीत ब्रह्म विलय स्थान यह योगिंद्र है क्योंकि हिमालय की गुफाओं में योग की साधना करते हैं। यह त्रिशूल धारण करने से पशुपति तथा विदेह मुक्त होने से दिगंबर है। सब कुछ दान देने में तत्पर औघड़ दानी है। अपनी प्रकृति में तमोगुणी होने से घृणितों से भी सहज स्नेह रखते हैं। विरक्त होने से उनमें कोई कामना नहीं रहती है। अपने परिवार के विरोधी परिवेश होने पर भी शांत और मस्त रहते हैं। इस प्रकार सृष्टि के एक सफल पिता हैं। इनका रंग श्वेत तो शरीर भी स्मशान की काली राख और कंठ नीला है। वही शरीर पर सर्प की माला तो हाथ में डमरू जिसके ध्वनि से सांप भागता हो और पुत्र कार्तिकेय का वाहन सर्प का भक्षक मयूर है। इनका अधोवस्त्र बागंबर है और वाहन नंदी जो बागंबर देखते ही भाग जाए तथा पत्नी दुर्गा का वाहन सिंह है। पुत्र गणेश का मुख हाथी का तथा वाहन मूषक जो सांप का खाद्य है और हाथी सिंह का शिकार है। अपने योगी राज होकर भी अपनी अर्धांगिनी पार्वती को समेटे अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए हैं। इस प्रकार वह परमानंद घन हैं जिनकी मस्ती में कहीं चूक नहीं रह जाती। शिव नटराज के रूप में आज के विज्ञानंद भी हैं। पदार्थ में होने वाले सभी घात प्रतिघात सभी अणुओं और परमाणुओं में छंदमय गति और यति के यह कारण होते हैं। इसी से वस्तुओं का उद्भव और विघटन होता रहता है। यही गति शिव के नित्य में दिखती है जिससे ये अणु तथा परमाणु गतिमान होते हैं। शिव का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसमें ओम प्रणव है वही ब्रह्म है ओमीति ब्रह्म। ओम ही सर्वत्र है ओम इति इदम सर्वम। ओम ही उनका स्वरूप है ओमित्य दनु कृतिर हस्म। यही ओम इनका नाम है। इसे बार बार रटते रहने से प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है। वह स्वयं ब्रह्म है क्योंकि प्रलय के बाद जो शेष रह जाता है वही ब्रह्म है। शिव प्रलयंकारी देव है पर प्रलय के बाद यही एक शेष रहते हैं। यो अविश्यसते वेद से ज्ञात होते हैं। नसन्न चा सच्छिव से केवल सृष्टि के आदि में न सत था न असत तब केवल एक ही था शिव। ब्रह्म सूत्र में भी पहले ही यह जिज्ञासा की गई है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। वही इसको दूसरे सूत्र से स्पष्ट किया गया है अस्य जन्मादयस्य यतः अर्थात अस्य इस संसार से में जन्मादि जन्म रक्षा तथा विनाश यस्य जिससे होता है वही ब्रह्म है। इस प्रकार शिव ही ब्रह्म है। ऊपर के वेद वाक्य से ज्ञात होता है कि सत का स्वरूप स्थिर होता है जबकि असत का परिवर्तनशील। पर जब ये दोनों ही नहीं थे तब केवल ब्रह्म था वही ब्रह्म शिव है। वही सृष्टि का कारण रूप है पर यह शिव त्रिदेवों का देवता शिव नहीं है। वह ब्रह्म शिव है जिसमें सभी देवों की शक्तियां समाहित रहती हैं तथा जहां से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने अपने कार्य के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। शिव साकार और निराकार दोनों ही रूपों में हैं। निराकार रूप में उनका लिंग पूज्य है और साकार रूप में विग्रह। शिवलिंग से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति स्थिति और उसी में सबका लय होता है उसे लिंग कहते हैं। लय नालिंगम मुच्यते यही से पुनः सृष्टि का उदय है इसलिए इसे पिता माना जाता है। पितृ मातृ स्वरूपेण स्वलिंग प्रपूज्यते पितृ मातृ स्वरूपेण स्वलिंग प्रपूज्येत इसकी स्थिति का स्थान योनि होता है। जिसमें यह स्थापित होता है योनि मातृ चिन्ह है। यह पार्वती का प्रतीक है, इसे भग भी कहते हैं। इसी को धारण करने से यह भगवान भग योनि वान युक्त धारक कहे जाते हैं। लिंग वेदी महावेदी लिंग साक्षान महेश्वर तयो संपूजना नित्यम देवी देवश्च पूजितौ। लिंग पुराण। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि भौतिक रूप से अलग ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर उनको सृष्टि के हेतु शक्ति के साथ जब शिव ने दर्शन दिया था तो उनका आधा शरीर पार्वती का था, जिसे अर्ध नारीश्वर कहते हैं। सृष्टि सृजक के रूप में यही उनका परात्पर स्वरूप है तथा उनका वाहन वृषभ, जो सदा उनके सम्मुख रहता है, ज्ञान एवं धर्म है, जिसके वे आचार्य हैं, वही उन्हीं का अंश है। यह विशिष्टता है कि शिव के अवतार की चर्चा किसी भी शास्त्र में नहीं की गई है, जबकि विष्णु तथा शक्ति के अवतारों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह पुष्ट करता है कि यह परात्पर ब्रह्म स्वतः ही अपने को सृष्टि के आदि में लिंग रूप में सृजन करते हैं और सर्वत्र मूल रूप में ही विराजमान रहकर योग के इस मार्ग से चलने वाले योगियों को सायुज्य भक्ति प्रदान करते हैं। मानव शिव योगेन शिवो भवति निश्चयम्। प्राचीनता और उत्पत्ति। शैव धर्म भारत का ही नहीं विश्व का एक व्यापक धर्म है, रहा है और रहेगा, क्योंकि यही सरलता से मनुष्य को शांति तथा त्राण सरलता से प्राप्त होने वाला स्थान है। इसलिए पत्थर को लिंग मानकर पूजने तथा वहां भी वैसा पत्थर स्थापित देखा जाए उसे मंदिर तथा पवित्र स्थान मानने के पीछे व्यापक किंतु अद्भुत शक्ति इसी देव में है। इसी से उनकी पूजा भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी होती थी। बाइबल में जेनेसिस अध्याय में कहा गया है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड हिम ही देम। ईश्वर ने अपने ही को मनुष्य बनाया, मनुष्यों को उसने स्वयं पुरुष स्त्री का रूप धारण कर उत्पन्न किया। प्राचीन मिश्र से भी लिंग पूजा का ज्ञान मिलता है। आज भी मक्का और मदीना में शिवलिंग की पूजा की जाती है तथा प्राचीन काल से ही यह वहां के मान्य देवता रहे हैं। प्राचीन यूनान रोम तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसकी एक लंबी मान्यता पुरातात्विक अध्ययन से प्राप्त होती है, जबकि भारत में पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा इसकी प्राचीनता आर्यों से जोड़ी गई है, जो एक भ्रामक तथ्य है, क्योंकि तब इसकी पूजा प्रारंभ हुई तब न आर्य थे न अनार्य, और न आर्य कभी बाहर से ही यहाँ आए। शैव धर्म के प्रारंभिक विकास में रुद्र विषयक कल्पना की पृष्ठभूमि में उनका भयंकर और विनाशकारी रूप अवस्थित था। ऋग्वेद के अनुसार शैव धर्म के प्रारंभिक विकास के समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि प्रकृति के भयंकर और विनाशक रूप तूफान तथा महामारी ही है। पशुओं और मनुष्यों को नष्ट कर देने वाली बिजली के समान तूफान पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है और घरों को नष्ट कर देता है। महामारियों के प्रचंड रूप के साथ साथ प्रकृति का एक विशाल भाग विनष्ट हो जाता है। इन सभी विनाशकारी रूपों में प्राचीन आर्यों ने प्रकृति के भयंकर रूप को क्रोध की अभिव्यक्ति समझा है। इसके शांति हेतु शिव को प्रार्थना स्तुति एवं बलि आदि धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास किया है। साथ ही आर्यकरण के लिए युद्ध और युद्ध के देवता की आवश्यकता थी। इसी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार रुद्र शिव जैसे विकराल देवता में आर्यों का विश्वास पैदा हुआ। उत्तर वैदिक काल में शांति की परिस्थिति में शासन उत्थान और कल्याण की भावना जागृत हुई, तब यही रुद्र वहीं से आगे चलकर शिव के रूप में परम श्रष्टा शासक आदि विश्व व्याप्त बन गया और उसमें ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की कल्पना की गई। ऐतिहासिक विकास। आदिकाल से महाकाव्य काल तक एक हड़प्पा सभ्यता का काल। सिंधु घाटी की सभ्यता से जो इस धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनको मार्शल ने तीन प्रकारों में बांटा है, सामान्य प्रस्तर खंड, लिंग और योनि प्रकार के प्रस्तर, लिंग प्रकार के प्रस्तर खंड। ए स्टिन ने बलूचिस्तान में इसी काल की सभ्यता के स्तर में मुगल घुंडई, परियानो घुंडई आदि से ऐसे ही प्रस्तर खंड प्राप्त किया है। इस काल के गुजरात से भी अनेक ऐसे प्रस्तर खंड प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार दीमापुर के चेसमैन स्तंभ तथा आसाम के कसोमरी प्रस्तर को भी कुछ लोग लिंग मानकर शैव धर्म की प्राचीनता वैदिक काल से पूर्व बताते हैं तथा इसकी मान्यता भारत में आर्यों से पूर्व स्वीकार करते हैं। बौद्धायन के अनुसार आर्यों के पहले संकीर्ण योनय कही जाने वाली जातियों का इस प्रकार का होना बताया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के बीच संभवतः कोई पारस्परिक उद्वेलन हुआ होगा, जिससे सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपना स्थानांतरण कर लिया होगा। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा सहस्त्र द्वारों वाले नगर की संपत्ति को बलपूर्वक जीतने का उल्लेख है। लगता है कि इनके पश्चिमी बस्ती वाले लोगों ने इन पर अधिकार कर लिया होगा। इसी ऋग्वैदिक ऋचा में शिष्ण देवों का उल्लेख हुआ है, जिनके पास अतुलित संपत्ति थी। यहाँ शिष्ण देवों से अभिप्राय लिंगों से है। संभवतः इस विस्तार के परिणाम स्वरूप आर्यों के उस फिक्रे में नए संप्रदाय को अपने में स्वीकार कर लिया होगा। यह आज भी पूर्ववत है, तभी इसके अनेक तत्व अभी भी समाज में यथावत मान्य है। जैसे पीपल की पूजा, लिंग की पूजा दक्षिण दिशा को अपवित्र मानकर उसी ओर शव का पैर करके लिटाना, वेदी मानकर यज्ञ करना आदि। अतः यह स्वीकार है कि पूर्व की सैंधव कालीन प्रकृति की संस्कृति की परंपराएं आज भी हमारे समाज में रची बसी हैं। श्री पी बी पाठक के विचारों में अथर्ववेद में की ऋचाओं का सिंधु सभ्यता के समझने के लिए पुनः इस दृष्टि से अध्ययन अपेक्षित है। यहाँ से कुछ ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं जो पाशुपत संप्रदाय की स्थिति को उस समय उजागर करती हैं। मार्शल तथा मैके ने ऐसी चार मुहरों की ओर संकेत किया है। इनमें एक मुहर ऑक्सफोर्ड के अस्मोलियन संग्रहालय में सुरक्षित है। सभी मुहरों में बनी आकृतियां लगभग समान हैं। इनमें आसन पर देवता विराजमान हैं, जो सिर पर एक ऐसा खोल धारण किए हैं जिसमें तीन सिंह हैं। वह लिंग की तरह सीधा समाधि में बैठा है तथा उसके पैरों के दोनों तलवे आमने सामने हैं। एक पैर ऊपर है तथा दूसरा नीचे लटकता है। उसके तीन सिर हैं तथा बाहें घूमकर पैरों पर टिकी हैं। उसके चारों ओर पशु खड़े हैं, जिनमें कुछ पालतू हैं, कुछ वन्य। इनके अनुसार कुछ खुदा है। मार्शल ने सिर वाली मूर्ति को पाशुपति शिव माना है। विद्वानों के अनुसार अथर्ववेद की ऋचा के आधार पर इन लेखों को पढ़ने तथा इनकी व्याख्या का प्रयास किया गया है। यह संभवतः आसुरी प्रवृत्ति को भगाने के लिए लिखा गया है। इस देव को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि देवता और लिंग दोनों रूपों में इनकी पूजा का चलन उस समय भी रहा होगा। इसी आधार पर व्हीलर का विचार है कि हिंदुओं में शिव और लिंग पूजा हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ हो गया था, पर यह बात सत्य हो सकती है जब हड़प्पा की सभ्यता को हिंदुओं की सभ्यता न मानी जाए। पर आज जब हड़प्पा वासी तथा आर्य भारतीय मूल के को ही स्वीकार कर लिए गए हैं, तो यह तर्क निराधार हो गया है। मार्शल ने इस मुहर पर अंकित लेख को क्यूया पढ़ा है और इसे एक देवता का नाम बताया है। इसमें कहां तक सत्यता है नहीं कहा जा सकता। रोजनी के अनुसार इसका अर्थ है हत्यारा, विनाशक। हॉपकिंस ने शिव को हत्यारा देवता माना है। यह बात भले ही सत्य हो, पर इसका स्पष्ट ही है सिंधु देव सभ्यता के समय शिव की पूजा लिंग तथा शिष्णधारी देवता दोनों रूपों में की जाती थी। रोजनी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता यूरोपीय मूल के हिती थे। इन्हें भगाकर द्रविड़ों ने वहां अपना अधिकार किया, जिन्हें पीछे आर्यों ने खदेड़कर वहां अपना प्रभुत्व जमाया। यद्यपि आर्यों के बाहर से आने की बात जब अमान्य हो चुकी है तो यह धारणा ही निर्मूल है। यह कहा जा सकता है कि पुरातात्विक उपलब्धियों के आधार पर ज्ञात होता है कि आर्य और द्रविड़ दोनों में शिव की पूजा प्रचलित थी। द्रविड़ के शिव पूजा के आधार पर यही संभवतः वहां शिवन के शब्द प्रचलित हैं। वहीं से संस्कृत भाषा में शिव शब्द लिया गया होगा, क्योंकि ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं है। शिवन का अर्थ काला होता है। संभवतः इसी आधार पर उत्तर वैदिक काल में शिव के लिए नील लोहित का उल्लेख हुआ है। तमिल साहित्य में इनके लिए सेम्बू का प्रचलन था। संभवतः इसी के पीछे शंभु शब्द संस्कृत में बना होगा। सेम्बू का अर्थ शिव के आधार पर कीथ ने कहा है कि यह स्वीकार करना कि शिव नामक देवता द्रविड़ उद्भव के हैं मात्र एक कल्पना ही लगती है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी स्थूल आधार उपलब्ध नहीं है। शब्दों का परस्पर एक दूसरे से लेन देन सभ्यता के विस्तार की कहानी का एक सामान्य अंग होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे यह कहा जाता है कि शिव के उपासक होने के कारण उनमें उनके नाम त्रयंबक के आधार पर दक्षिण भारत के एक क्षेत्र में तेलंगाना कहा गया है। डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय ने सिंधु घाटी में प्राप्त मुहरों पर जिनमें शिव के तीन मुंह दिखाई पड़ते हैं के विषय में कहा है कि ये मूलतः चार रहे होंगे। इनमें एक पीछे की ओर होने के कारण दिखाई नहीं दे पड़ता है। इसके लिए उन्होंने प्रारंभिक तांत्रिक साहित्य में वर्णित सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित गांधार प्रदेश के तंबरू नामक गंधर्व की ओर संकेत किया है और इसे शिव का दूसरा नाम तंबरू शिव बताया है, क्योंकि इसके भी चार मुख थे। महाभारत में भी डॉक्टर पीसी बागची के अनुसार लगता है कि सिंधु सभ्यता का प्रभाव महाकाव्यों के समय नष्ट हो चुका था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी की कुछ मुद्राओं पर वेदी में अग्नि शिखा प्रदर्शित की गई है। इसे भी प्रायः विद्वानों ने शिव का ही प्रतीक माना है, क्योंकि यह भी नील लोहित ही होता है जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है। 2. वैदिक काल। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार द नेम शिवा लिटरली ऑस्पिशियस डज नॉट अक्यूर हाउएवर अर्ली इन द वेदास द वैदिक गॉड्स आर मोस्टली नेचर्स गॉड्स एज रुद्रा द गॉड ऑफ थंडर फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द ऋग्वेद ओनली टू गिव वे subsequently to Shiva। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में शिव का उल्लेख नहीं है। वैदिक देवता मुख्यतः प्राकृतिक देवता थे। इनमें तड़ित के देवता रुद्र विशेष रूप से ऋग्वेद में शिव के स्थान पर पूज्य थे। इनका ज्ञान श्वेतांबर उपनिषद से होता है। एको हि रुद्र स शिवः। इसमें रुद्र और शिव का एकीकरण व्यक्त होता है। अथर्व शीरस के अनुसार शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि ये अपने उपासकों के सामने अपना रूप शीघ्र ही प्रकट कर देते हैं। द्रुतमस्य रूपम उपलभ्यते। इनके रूप की आवश्यकता पर अगर विचार किया जाए तो रुद्र शब्द के विच्छेद से स्पष्ट होगा कि यह दुखों का विनष्ट करने वाले कहे गए हैं। रुत दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः। शिव के लिए जिन विशेषणों के प्रयोग का चलन बाद में हुआ वही विशेषण रुद्र के लिए वेदों में मिलते हैं। अतः वैदिक रुद्र ही शिव हैं, जो बाद में चलकर शिव के नाम से ही विख्यात हुए। ऋग्वेद के केवल 3 सूक्त रुद्र के विषय में प्राप्त होते हैं। ये है प्रथम मंडल का 114वां सूक्त, द्वितीय मंडल का 33वां सूक्त तथा 7वें मंडल का 46वां सूक्त। अन्य देवताओं के साथ ऋग्वेद में कुल 50 बार रुद्र का नाम आया है, पर दूसरे देवताओं की अपेक्षा इनकी महत्ता कम लगती है। यहाँ इन्हें क्रूर बताते हुए स्वर्ग का रक्तपूर्ण वाराह, अत्यंत सुंदर और यौवन वाले अपने उस उपासकों के प्रति उपकारी और विरोधियों के विध्वंसक तथा मरुतों का पिता बताया गया है। इसी से वैदिक ग्रंथों में रुद्र और मरुतों की उपासना साथ साथ होने का ज्ञान मिलता है। इनके लिए आज प्रयोग किया जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद का ही है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव वंदना मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। इसमें प्रयुक्त त्रयंबक शब्द का उल्लेख शिव के संबंध में वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी मिलता है। भाष्यकारों ने इसका अभिप्राय तीन नेत्रों वाला किया है, पर पाश्चात्य विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते। ये इसका अर्थ तीन माताओं वाला बतलाते हैं, पर यह मान्य नहीं लगता, क्योंकि रुद्र को तीन माताओं का ज्ञान नहीं मिलता। ऐसा एक भी विचार है कि यह जननी वाचक न होकर भगनी वाचक लगता है। ऋग्वेद में ये अग्नि के प्रतीक लगते हैं, त्यमग्ने रुद्रो। लगता है कि अग्नि की लपटें जो ऊपर उड़ती हैं, संभवतः उन्हीं से शिवलिंग की कल्पना की गई होगी। अग्नि पर घी डालने से वह ऊपर की ओर प्रज्वलित हो उड़ती है। ठीक उसी प्रकार शिव के सिर पर जलधारा चढ़ाकर पूजन किया जाता है। अग्नि वेदी के बीच प्रज्वलित होती है और शिवलिंग योनि के बीच स्थित होता है, जो समानता का बोधक है। इसी से अग्नि और शिव दोनों को एक मानकर अग्नि को उनका प्रतीक बताया गया है। यहाँ इनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने हथियारों को दूर रखें तथा मनुष्यों और पशुओं की रक्षा करें। इन्हें महामारी फैलाने वाला भी कहा गया है, अतः इनसे प्रार्थना की गई है कि महामारी तथा बीमारी से लोगों को बचाएं। इन्हें सैकड़ों औषधियों का रखने वाला कहा गया है तथा वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहा गया है। भिषक तमम त्वा भिषजा श्रृणोमि। ऋग्वेद में एक रुद्र की बात की गई है, जिसे मुमुक्ष लोग अपने अंतःकरण में बुद्धि द्वारा जानना चाहते हैं, अतः इसका वर्णन यहाँ परमात्मा परक है, पर दूसरी ओर वह उग्र और भय बताया गया है। यहाँ प्रार्थना की गई है कि उसके बाद हम लोगों को स्पर्श न करें, पर विदेशी विचारकों के अनुसार यह प्राकृतिक देवता बताया गया है। डॉक्टर आदेर के अनुसार यह मृतात्माओं से संबद्ध है। डॉक्टर आल्डेनबर्ग इन्हें जंगल तथा पर्वत से संबद्ध बताते हैं। डॉक्टर हिलेब्रांट कहते हैं कि यह ग्रीष्मकालीन देव है तथा विशेष नक्षत्र में इनका सामीप्य है। डॉक्टर बेवर ने इन्हें तूफान का देवता बताया है, पर ये सभी कथन मूलतः काल्पनिक लगते हैं। इस समय लिंग पूजा का भी प्रचलन था। पीटी श्रीनिवास आयंगर के अनुसार कृष्ण देवों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, पर यह लिंग रूप में पूजित शिव की ओर संकेत करते हैं, जो पीछे एक व्यापक परंपरा से के रूप में चल पड़ा। इसका प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही दिखता है, जो वैदिक कालीन सिद्ध हो चुका था। जैसा ऊपर से ज्ञात होता है, वेद में रुद्र संहार या आरोग्य दाता देवता के रूप में माने जाते थे। वैदिक आर्यों ने रुद्र में प्रकृति के भयंकर और विनाशक रूपों को देखा था, जो अपने पुत्र रुद्रियह मरुतों के साथ गर्जना करते हुए भ्रमण करता है। ऋग्वेद में वर्णित है कि वे अपने तेजों में बाड़ों को फेंकते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्हीं आधारों पर डॉक्टर भंडारकर ने इनके विषय में कहा है, द ड्रेडफुल एंड डिस्ट्रैक्टिव फेनोमिना आर यूजुअली द स्टॉर्म दैट अपरूट ट्रीज एंड इवन डिमोलिश हाउसेस अकॉम्पेंड बाय द Thunderbolt which strikes down men and beasts dead in a moment, epidemics that raise and carry off number of men. In this the old Aryans saw Rudra, who went about howling with the stormy winds who were his sons. But human beings don't believe in a purely malignant power ringing in the universe. ऋग्वेदिक में इनके स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। रुद्र के हाथ तथा बाहु हैं। उनका शरीर अत्यंत बलिष्ठ है। उनके होठ अत्यंत सुंदर है, सुशिपह। उनके माथे पर जटाजूट है, जिसके कारण वे कपर्दी कहलाते हैं। उनका रंग भूरा है तथा आकृति देदीप्यमान है। वे नाना रूप धारण करने वाले हैं, परुरूपः, तथा उनके अंग चमकने वाले सोने के गहनों से विभूषित हैं। वे रथ पर सवार रहते हैं। यजुर्वेद में भी रुद्र के विषय में वर्णन है। रुद्राध्याय में रुद्र एक बलवान सुसज्जित योद्धा के रूप में वर्णित किए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित है कि उनके हाथ में धनुष तथा बाण है। उनके धनुष का नाम पिनाक है। उनका धनुष सोने का बना हुआ है। हजारों आदमियों को मारने वाला, सैकड़ों बाणों से सुशोभित तथा मयूर पुच्छ से विभूषित है। धनुर्विभर्वी हरितम हिरण्यम सहस्रात्नि शतपदम शिखंडिनम। बाड़ों के रखने के लिए वे तरकस धारण करते हैं, जो संख्या में 100 हैं। उनके हाथ में तलवार भी चमकती रहती है तथा इस तलवार के रखने के लिए उनके पास म्यान है। वे वज्र भी धारण करते हैं, जिनका नाम शिक है। शरीर की रक्षा करने के लिए अनेक सामग्रियों को पहने रहते हैं। सिर की रक्षा के लिए वे शिरस्त्राण धारण करते हैं। देह के बचाव के लिए कवच तथा चर्म पहने रहते हैं। रुद्र अपने शरीर पर चर्म वस्त्र पहनते हैं। इन वर्णों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिस तरह रथ पर चढ़कर धनुष बाण से सुसज्जित योद्धा रणांगण में शत्रुओं के संहार के लिए जाता है, उसी भांति रुद्र सिर पर शिरस्त्राण तथा देह पर कवच और चर्म पहनकर रथ पर आसीन होकर धनुष पर बाण चढ़ाकर अपने भक्तों के बैरियों को मारने के लिए मैदान में उतरते हैं। वे धनुष पर बाण हमेशा चढ़ाए रहते हैं, इसलिए उन्हें आतयाई नाम से संबोधित किया गया है। उनके अस्त्र शस्त्र इतने भयानक है कि ऋषि इनसे बचने के लिए सदा स्तुति किया करते हैं। विज्यम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवान उत अनेसन्वस्य या ईशव आभुरस्य निशंगधि। यजुर्वेद में इन्हें नील दीवाय च शीत काष्ठ च, नीला गले वाला तथा श्वेत कंठ वाला कहा गया है। वही भूपति तथा पशुपति थे। इनके आघात को सहन करना सभी देवताओं तथा मनुष्यों के लिए संभव नहीं था। इन्हीं का एक रूप पशुपति है, जो 5 प्रकार के पशुओं, गौ, घोड़ा, मनुष्य, बकरी तथा भेड़ से घिरे होते हैं। उन्हें तीनों लोकों का अधिपति और स्वामी माना गया है। इसके लिए उन्हें इन विभिन्न नामों उग्र, पशुपति, शर्व, ईशान, महादेव आदि से संबोधित किया गया है। पशुओं के स्वामी होने के कारण यह पशुपति कहलाए तथा अग्नि के समान ज्वलनशील होने के कारण कपर्दिन कहे जाते हैं। सामान्य वर्ग के लोगों में ख्याति प्राप्त होने से उन्हीं के समान इनके वस्त्रों की भी कल्पना की गई, जिससे इन्हें कृतिवासिनः चर्म धारण करने वाला कहा गया है। इस प्रकार रुद्र शिव का स्वरूप अब अत्यंत व्यापक तथा विकसित था। संभवतः सामान्य लोगों में यही धर्म व्यापक था। यहाँ वहाँ शिव की प्रधानता रुद्र रूप में थी। इसी समय उनको शंकर, शिव, शंभु आदि नाम भी दिया गया है। लगता है कि अब उग्रता समाप्त हो रही थी, तभी इनको इन सौम्य स्वरूपों के नाम से संबोधित किया गया होगा। अथर्ववेद में रुद्र की महत्ता ऋग्वैदिक काल से अधिक है। इस काल में रुद्र विषयक कल्पना का विकास हुआ। अथर्ववेद में रुद्र के विभिन्न नाम भवः, शर्वः, पशुपति तथा भूतपति वर्णित है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का मत है कि भव तथा शर्व दो भिन्न देव हैं। जो द्विपद एवं चतुष्पद जीवों पर शासन करते हैं। ये समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ हैं। समीप और दूर के सभी पदार्थ उन्हीं के हैं। वे सहस्राक्ष हैं। यही एक स्थल पर उन्हें प्रकाश की तरह तेज पुंज कहा गया है। उनका क्षेत्र दूर तक फैला है। कोई भी देवता या नर उनके आघात से नहीं बच सकता है। यातुधानों या दुष्टों पर वज्र प्रहार करने के लिए तथा स्तुतिकर्ता को क्लेश से मुक्त करने के लिए उनकी अभ्यर्थना की गई है। उन्हें सर्व के रूप में धनुधर एवं भव के रूप में राजा कहा गया है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपना घातक विष अन्यत्र ले जाएं। रुद्र अग्नि में, जल में, औषधियों में एवं वनस्पतियों में है तथा समस्त भूत उन्हीं में ही रचे हैं। अतः वेद में वर्णित पशुपति का तात्पर्य मात्र गाय आदि जानवरों के ऊपर आधिपत्य से नहीं है, प्रत्युत पशु के अंतर्गत मनुष्यों की भी गणना अथर्ववेद को मान्य है। अथर्ववेद का कथन है कि तवे में पंच पशवो विभक्ता गावो अश्वाह पुरुषा अजायः। अथर्ववेद के इस मंत्र से पशु के तांत्रिक अर्थ का आभास होता है, जिसमें समग्र भुवन निवास करते हैं। वस्तुओं को धारण करने वाले विस्तृत ब्रह्मांड रूपी कोश रुद्र की अपनी वस्तु है। वे उसके उत्तराधिकारी हैं। अथर्ववेद में रुद्र को समस्त भुवनों के रचयिता के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यो अग्नौ रुद्रो य अपस्वंत य ओषधिर विरुद्ध आविशेष य इमा विश्वा भुवनानि चाक्रष्टये तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नय। शतपथ ब्राह्मण एवं कौशितकी ब्राह्मण से स्पष्ट होता है कि इन ग्रंथों में रुद्र को उषा या पुत्र स्वीकार किया गया है। बड़े होने पर प्रजापति ने उनके 8 नाम रखे। इन 8 नामों में से 7 नामों का उल्लेख अथर्ववेद में आया है। 8वां नाम आशनिया वज्र है। इन नामों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि प्रकृति के विभिन्न रूपों के आधार पर रुद्र के विभिन्न नामकरण किए गए हैं। विनाशकारी, भयंकर, कल्याणकारी और दयालु रूपों से अथर्ववेद में उल्लिखित 7 देवों की मान्यता ज्ञात मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण में वे सब एक देव के नाम हैं। वहां एक नाम और अम्बा मिलता है, जिनमें से रुद्र, सर्व, उग्र और एवं अशीन, ये 4 नाम विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं, तथा भव, पशुपति, महादेव एवं ईशान उनके कल्याणकारी शक्ति के प्रतीक हैं। यहाँ गिरित्र तथा गिरीश 2 विशेषणों का विशेष चलन ज्ञात होता है। इससे लगता है कि इस समय यह धर्म आर्यावर्त या मध्य प्रदेश के पश्चिमी पर्वतीय भाग में भी फैला था। यही कारण है कि जिस वज्र का प्रयोग ये करते बहुत बताए गए हैं, उसे मेघ से निकला हुआ कहा गया है। यहाँ मेघ से पर्वत की तुलना की गई है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि वात्स्यायनी संहिता में रुद्र के मूजवंत पर्वत से अलग हटने को कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार मूजवंत पर्वत पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र था। वहाँ के निवासियों को महावृष कहा गया है। डॉक्टर वेंकट चलैया के अनुसार महावृष से अभिप्रेत है कि वहाँ लोगों द्वारा रुद्र को वृषभ के रूप में स्वीकार किया जाने लगा था, इसलिए गिरित्र और गिरीश उपाधियां इनके लिए इस समय प्रयुक्त होनी समीचीन लगती है। अब समाज में शिव के 2 और रूपों को भी स्वीकारा जाने लगा था। इन्हें कदर्पिन, कपरदिन कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ कदर्पों की तरह ज्वाला उगलने वाला कहकर अग्नि ने उनकी अभिन्नता स्थापित की गई है। इस प्रकार रुद्र रूप अब अनेकता में संबोधित होने लगा था, अर्थात रुद्र का स्वरूप कई और व्यापक होने लगा था। यही शिवायतनुः का भी संबोधन इनके लिए मिलता है। शिव का यह स्वरूप कल्याणकारी है, अतः इससे अभिप्रेत है कल्याण मूर्ति। यह मंगलकारी रूप उनके सौम्य पक्ष का बोधक है। लगता है कि इस समय शिव के रौद्र और सौम्य दोनों रूपों की उपासना की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त इनके 8 नामों में से 4 नाम रुद्र, शर्व, उग्र और अशीन विध्वंसकारी है, जबकि भव, पशुपति, महादेव और ईशान 4 नाम कल्याणकारी है। इससे स्पष्ट है कि अब यह धर्म पर्वतों से नीचे उतरकर संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करता हुआ अधिक व्यापक हो गया। सूत्र काल में रुद्र की उपासना में कर्म कांडों को स्थान मिला। अब पशु बलि की व्यवस्था की गई। यह बलि ग्राम के बाहर दी जाती थी तथा उच्छिष्टांश को भी वहीं छोड़ दिया जाता था। संभवतः इसी परंपरा का प्रभाव है कि शिव का प्रसाद आज भी ग्राम के बाहर रहने वाले अतिथि जाति के ब्राह्मणों को छोड़कर कोई दूसरा उपासक स्वीकार नहीं करता है। मंत्रों के जप का प्रयोग रुद्र की प्रसन्नता के लिए किया जाने लगा। इनको अब 12 नाम दिए गए। लगता है कि व्यापक प्रकृति के विविध रूपों के साथ रुद्र का सानिध्य स्थापित किया गया। ऐसा विश्वास संभवतः इसलिए था कि इसी की प्रसन्नता से प्राकृतिक तत्वों से मनुष्य को सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। इस समय रुद्राणी, भवानी, शर्वाणी रुद्र की 4 पत्नियां बतलाई गई। 3. संहिता काल। संहिताओं में रुद्र शिव के रूप एवं अस्तित्व का वर्णन किया गया है। तैतरीय संहिता और वात्सनेय संहिता में रुद्र के अधिक विकसित स्वरूप का वर्णन मिलता है। उनके मंगल में शिवाह तनुह और उग्र रूपों में भेद किया गया है। यहाँ शिव को गिरीश, शिव पशुनाम पति, कपर्दी, शंभु, भव, सर्व, रुद्र, शिवाह, तनुह, संभव, शंकर, त्रयंबक आदि कहा गया है। लगता है कि यहाँ रुद्र का नाम अब बहुत व्यापक कर दिया गया है। यहाँ पर रुद्र एक सामान्य नाम है जिसका अभिप्राय संभवतः प्रेतात्माओं से है। एक अन्य स्थान पर पुनः इस नाम का प्रयोग मिलता है, किंतु यहाँ इसका कुछ अच्छा तात्पर्य है। रुद्रों को गण एवं गणपति, कर्मकार, कुंभकार, रथकार, तक्षक एवं निषादों का पति कहा गया है। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि इस प्रकार विभिन्न शिल्पियों एवं निषादों के साथ रुद्र को उनके उपास्य देव होने के कारण जोड़ा गया है।